ओम शांति। जीवन में हर इंसान को खुशी चाहिए। गीत में भी सुना, बांटते चलो खुशियां। बांट कौन सकता है? जिसके पास होगी। तो आप सब तो है ना, ऐसे बोलो हम बांट सकते हैं। तो किसके पास है खुशी, हाथ उठाओ। और जो नहीं आ रहे वो सबको देने वाले हैं, जो नहीं उठा रहे। तो खुशी हमारी निजी प्रॉपर्टी है, निजी संपदा है। जब तक हमें अपनी प्रॉपर्टी की स्मृति रहती है तो जीवन में उतना नशा अपने आप कायम रहता है। जब हम विस्मृत हो जाते हैं अपनी मलकियत, जायदाद, मर्तबा, पद, पोजीशन, जब ये विस्मृत हो जाते हैं तो जीवन में नीरस, उदासी, खुशी गायब होना, असमंजस की स्थिति बने रहना, ये सब चीजें आत्मा को घेर लेती हैं। जैसे हम शरीर को दुरुस्त रखने के लिए अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, आत्मा टेस्ट करती है कि मुख टेस्ट करता है, जीभ टेस्ट करती है ना, मीठा खाए तो कितना अच्छा लगता है। एक जीव आत्मा को भी है। कौन सी जीव है? आत्मा की जीव। आत्मा को भी एक जीव लगी हुई है, है जी, रूहानी स्मरण। और जब ज्ञान का टेस्ट आता है तो आत्मा नाच उठती है, सुख मिलता है। हम अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, फिर बाद में मुख से क्या निकलता है? मजा आ गया, है ना। तो ऐसे आत्मा का भी भोजन है शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, पावरफुल संकल्प, दिव्य अलौकिक संकल्प। और ये खुराक, अथाह खुराक बाबा ने हम सबको दी हुई है। जितना इस खुराक से हम स्वयं को पोषित करते हैं, भरपूर रखते हैं, तो हमारा जीवन ही योगी बन जाता है। योग में असमंजस की स्थिति नहीं बनी रहेगी। नहीं तो कई बार अगर बैठे हैं योग में, अगर मन बुद्धि भटक रहा है तो उसका एक ही कारण है, ज्ञान का अभाव। इसलिए आज बाबा ने मुरली के स्टार्टिंग में कहा, तुमको क्या मिला है? ज्ञान की दृष्टि मिली है। किस लिए? भटकना तुम्हारा बंद हो गया अभी। तो हमने अपने बुद्धि में ज्ञान का खजाना कितना भर के रखा हुआ है। वो खजाना एक रोशनी की तरह काम करता है, और जहां रोशनी है वहां अंधकार तो ठहर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। इसलिए निरंतर बाबा कहते ज्ञान का स्नान करते रहो, अपने स्वयं के ऊपर, आत्मा के ऊपर ज्ञान जल चढ़ाते रहो। तो सभी मधुबन में भट्टी में आए हैं, सेवा में आए हैं, तो यहां तो अच्छी शांति की अनुभूति हो रही है, खुशी है, मौज है। लेकिन खुशी और मौज की जरूरत कहां पड़ेगी? कर्म क्षेत्र पर, जहां हमारा लंबा समय व्यतीत होता है, वहां इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हम मधुबन में तो यहां रहेगी रहेगी, हम सबको भी कर्म क्षेत्र पर वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बेहद का परिवार है, बड़ा परिवार है, तो उस समय मानसिक अवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ जो स्वयं करता है इंडिपेंडेंटली, स्वयं व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पर, वो ही अपने आप को सशक्त बना सकता है। तो कर्म क्षेत्र भी सबका अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है। अगर हम इस फिलॉसफी को समझ जाते हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है, तो फिर हम प्रभावित नहीं होते किसी के, और प्रभावित अवस्था रहेगी। नहीं तो मन में संकल्प चलते हैं कई बार, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये जो छोटे छोटे संकल्प हैं हमारी आत्मा की एनर्जी को खा जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, छोटी छोटी बातों में कैसे फंस सकते हो? वो तो हमारे शुद्ध जीवन के संस्कार हैं, थे हैं नहीं अभी। बाबा कहते हैं 5 रूपों का अभ्यास करो, लेकिन हम 6 रूपों का अभ्यास करते रहते हैं, बाबा से भी ज्यादा। कौन से शूद्रपन के संस्कार भी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं अनादि आदि फरिश्ता देवता पूज्य स्वरूप याद करो, लेकिन उनको छोड़ हम अपने पुराने जीवन के शूद्रपन के संस्कारों को याद करते रहते हैं, वही ड्रिल ज्यादा रहती है। अब जो ड्रिल करेंगे तो काम भी तो वह वैसा ही होगा, हमारे जीवन पर भी इफेक्ट वैसा ही दृष्टिगोचर होगा। तो सारा खेल स्मृति विस्मृति का है, इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ज्ञान की दृष्टि चाहिए, रूहानी रिफ्रेशमेंट है ना। तो अभी बीच बीच में हम ज्ञान भी करेंगे, बीच बीच में एक रूहानी एक्सरसाइज भी करेंगे, और बड़ी सिंपल है लेकिन थोड़ा उसमें हम एक्टिव भी रहेंगे। तो हम पहले बोलेंगे, आप सुनेंगे ठीक से, फिर आप उस पर एक्टिंग करेंगे, ठीक है। और बड़ा आसान है, नवीनता तो होनी चाहिए ना कुछ, क्योंकि हम ज्ञान सुनते रहते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारी कर्मेंद्रिय में समा जाए, उसके लिए कर्मेंद्रिय को भी तो थोड़ा पाठ पढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। कर्मेंद्रिय शीतल कैसे होंगी, जब कर्मेंद्रियों को भी हम ज्ञान योग की एक्सरसाइज कराएंगे तो हम 12 बातें हैं 13 बातें। तो सबसे पहला आत्म स्मृति का तिलक है ना, अब सभी पहले ऐसे करेंगे, तो 1 नंबर याद रखना, फिर हम 1 बोलेंगे तो आपको सीधा 1 करेंगे, फिर आत्म स्मृति का तिलक नहीं बोलेंगे। तो पहला आत्म स्मृति का तिलक, दूसरा है पवित्रता का ताज, तीसरा आत्मिक दृष्टि का काजल, चौथा मौन का सुख, पांचवा पवित्रता का कंगन। सब ऐसे करना पड़ेगा बाद में, तो फिर उसमें 5 ही बोलेंगे, फिर पवित्रता का कंगन नहीं बोलेंगे, तो आपको 5 नंबर करते ऐसे ऐसे करना, ठीक है। फिर छठा है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, और सातवां है हाथ में हाथ, बाबा के हाथ में अपना हाथ। आठवां है अष्ट शक्तियों की शतरछाया। नौवां है नव खजानों के जो खान है वो हमारे, माना पैसा हमारे हाथ में, तो ऐसे ऐसे करना उसमें। तो दसवां है दशानन पर विजय, जब 10 नंबर बोलेंगे तो सीधा ऐसे करने का, और अचानक में 20 का कोई भी नंबर बोल सकते हैं। 11वां है मूल वतन, तो मूल वतन करेंगे तो ऐसे करने का ऊपर से। 12वां सूक्ष्म वतन, और 13वां स्थूल वतन। तो ये 13 हो गए, ठीक है। अब फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं, फिर परीक्षा चालू हो जाएगी। तो सबसे पहला कौन सा, आत्म स्मृति का तिलक, दूसरा पवित्रता का ताज, तीसरा आत्मिक दृष्टि का काजल ऐसे पहनने का दोनों आंखों में, आंखें ठीक हो जाएंगी, चौथा मौन का सुख, पांचवा पवित्रता का कंगन, छठा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति, सातवां हाथ में हाथ, आठवां आठ शक्तियों की शतरछाया, नौवां खजानों की खान, दसवां दशानन पर विजय, 11वां मूल वतन, 12वां सूक्ष्म वतन, और 13वां तो पता ही है आपको, ठीक है। तो अब हम नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। 1 नंबर, 1, 2, 3, 8, 4, 11, 9, 5, 7, 8, 10, 6 13, 15, अच्छा है ही नहीं वो 15 है ही नहीं। तो फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आठ दो और दो में ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे है। ये मन को एक्टिव करने का तरीका है, ये भी एक ड्रिल है। इसमें ये ब्रेन जिम कहेंगे इसको या ड्रिल कहो जो भी है, तो ये भी जरूरी है। अगर मन भटकता ना तो इन चीजों में भटकाना मन को, क्योंकि मन ऐसा नहीं कि बाबा कहते कंट्रोल कर दो तुरंत हमारे हाथ में आ जाएगा। मन को हमको दिशा देनी है, एक नई दिशा। अगर हमारा मन जहां भी जा रहा है, लौकिक संबंधों में जा रहा है तो जाने दो उसको, उसमें ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लौकिक संबंधों को भी ज्ञान की दृष्टि से देखना आरंभ कर दो। बिजनेस का कोई याद आ रहा है तो वह आने दो, कोई दिक्कत नहीं, रोकना नहीं है। जबरदस्ती रोकेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा एकदम, और फिर अचानक कभी भी विस्फोट होगा वो। इसलिए उसका सामना करना है, उसको ज्ञान की दृष्टि से देखना है ना। तो नौ नंबर दो, पैसे भूल गए, खजाना ही भूल गए सारा। बारह नंबर दो, वो ऐसे बोल रही है। चार, पांच, आठ, दस, तेरह। तो ऐसे कितनी भी ड्रिल बनाई जा सकती है। तो ऐसे घर में लौकिक बालों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। खाली ज्ञान सुनाना नहीं है, लेकिन नए नए तरीके, हम उनको रचनात्मक तरीके से कुछ ऐसी गतिविधियां स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे तो वो भी नवीनता का अनुभव करेंगे। नहीं तो खाली ज्ञान ही सुनाते रहे सुनाते रहे तो लोग बोर हो जाते हैं उससे, है ना। ऐसे ब्राह्मणों में भी क्या होता है, रोज वही लगता है वही मुरली सुनते हैं, मीठे बच्चे लेकर एंड तक वही वही, लेकिन लास्ट में बड़े खुश होते हैं जब कहते हैं बाबा अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पर दी, देखो अभी भी खुश हो रहे हैं, बोला आज का काम पूरा हो गया। तो मुरली में नवीनता चाहिए। एक ही तरीके से मुरली को सुनने का अगर हम अभ्यास डालते तो बोर हो जाते हैं, इसलिए नए नए तरीके से कभी उसमें से टॉपिक ढूंढिए। जैसे आज हमने उसमें 10-12 टॉपिक ढूंढे, तो अगर वो 10-12 शब्द भी याद है ना तो भी बुद्धि चलती रही, कुछ ना कुछ सोचती रहेगी। उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से थे वो देखो, किसी बाबा ने कौन से पात्र को याद किया, जैसे बाहर की आत्मा, जैसे महात्मा गांधी को बाबा याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, ऐसे किस किस को याद करते हैं, सारा एक लिस्ट बनाइए। कौन कौन से जानवर को बाबा याद करते हैं उसकी लिस्ट बना सकते हैं। कौन कौन से जानवर को याद करते हैं, जानवरों का याद है सारा ही। फिर उस जानवर के बारे में बाबा क्या कहते हैं, है ना, तो वो सब चीजें देख सकते हैं। फिर जो तीर्थ स्थानों के बारे में बाबा याद करते हैं, उन तीर्थ स्थानों को याद करते हुए हमारी मनोवृत्ति कैसी रहती है, क्या उस तीर्थ स्थान पर हम इष्ट देव बनकर वहां मौजूद हो जाते हैं। तो ज्ञान को रोचक तरीके से, रमणीक तरीके से, बहुत भारी भारी बातें ना हमको बहुत भारी कर देती हैं, इससे थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से ज्ञान को जीवन में लाना है। रमणीकता चाहिए, जहां रमणीकता है वो लंबे समय तक चीज चलती है। गंभीरता थोड़ा समय के बाद, हाँ रमणीकता के साथ फिर गंभीरता भी आ जाएगी जब लंबे समय तक हम इस आदत को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, तो एक मैच्योरिटी आ जाती है। और जब ज्ञान की मैच्योरिटी आ गई तो संसार की कोई भी चीज हमको प्रभावित नहीं करेगी फिर, क्योंकि उसका हमने सुख ले लिया है, अलौकिक सुख। शाम की क्लास थी ना, क्या टॉपिक था, अलौकिक डैश, एक अनंतनाद बोल रहे दूसरा अंतर्नाद, दोनों में से कौन था, अंतर्नाद, क्या अर्थ होता उसका, बड़ा गहराई से समझा दिया होगा वो। पहले होनी चाहिए ना, हाँ ये भी नहीं सोचना भाई ड्रामा था ये भी, तो पहले कैसे कर सकते थे। हाँ तो ज्ञान को रमणीक तरीके से, तो हम अभी देखेंगे कि कुछ एक बातें जो हमारे जीवन में परमानेंट रहनी चाहिए और उनका लंबे समय तक अभ्यास करना है। और ये पुरुषार्थ जो हमको व्यक्तिगत खुद की रुचि होनी चाहिए, दूसरों के कहने पर हम लंबा समय तक नहीं चल सकते हैं। अगर हम किसी की भी क्लास होते हैं, किसी की भी, वो वहां तक अच्छी है, थोड़ा आगे तक रहेगी, 2-3-4 दिन उसका प्रभाव रहेगा, आखिरकार हमारा ही दिमाग काम करना आरंभ कर देगा। तो जो हमको जो भगवान से बुद्धि मिली, दिव्य बुद्धि, अगर उसको हमने कार्य में ना लगाते हुए दूसरे के ऊपर आधारित रहे तो लंबा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए अपने हाथ का जला हुआ भोजन भी स्वाद लगता है, कैसा भी ना हो। बाबा क्या कहते हैं, अपनी गोर तो नशा चढ़े। तो हमको हर एक से एग्जाम्पल तो मिलते हैं मंथन चिंतन कैसे करना, लेकिन आखिर अल्टीमेट अंतिम प्रसाद तो खुद को ही करना पड़ेगा। अंत में जब को शरीर बनना तो दूसरा कोई आने वाले, खुद को शरीर बनने का, शरीर तो खुद को छोड़ना है और सारा प्रसाद तो वही है शरीर छोड़ने का। तो कुछ एक बातें हैं जो जीवन में परमानेंट रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कौन सी होगी? हाँ जी, अंतर्मुखता का अभ्यास। आज की क्या लगभग एक सप्ताह से आ रहा है, और इस महीने तो बाबा ऐसे भी जो इशारे चल रहे हैं व्यक्ति इशारे, अंतर्मुखता और आत्मिक स्मृति, और ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर आत्म चिंतन नहीं करते हैं तो बाहरी दुनिया भी चिंतन हमारी बुद्धि को, मन बुद्धि को दबा के रखता है। क्योंकि बाह्य मुक्ता की आदत हम सबको बहुत हो गई थी, वो बाह्य मुक्ता की आदत भी हमारी जो थोड़ी थोड़ी शक्तियां इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है, तो बाह्य मुक्ता में आने से धीरे धीरे खत्म हो जाती हो। इसलिए अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ, अर्थात जो भी अनावश्यक बातें, अंतर्मुक्ता यानी कि हमको बिल्कुल ही साइलेंस ही हो जाना, जो भी अनावश्यक व्यर्थ फालतू बातें हैं, नकारात्मक है, उनसे थोड़ा किनारा करके पढ़ाई के प्रति या मुरली में को विशेष पॉइंट कलेक्ट करके उसके बारे में गहराई से चिंतन करना। सोचना है कि ब्राह्मण जीवन आखिर हमने इसका इसमें दाखिला लिया क्यों, इसमें इसमें हमको कौन सा सब्जेक्ट मिला हुआ है। जो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, उस सब्जेक्ट को छोड़कर अगर हम दूसरे सब्जेक्ट को हाथ में पकड़ रहे हैं तो हमारा हित तो होने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं हमेशा सोच चिंतन करो, लेकिन होता क्या है, कभी कभी बोल ही दिया भाई साहब ने, पर चिंतन चले जाते हैं। पर चिंतन अर्थात क्या, दूसरे का चिंतन तो है ही है, लेकिन अभी देह का चिंतन भी लंबे समय तक करते रहना, ये भी तो पर चिंतन है। देह की स्मृतियों में के जाल में आत्मा बंधी रहती है। ठीक है, देह को सजाना संवारना उसका संभालना किसी दायरे तक है, लेकिन हम हमेशा देह का ही चिंतन करते रहे, दूसरे की देह ही हमको भ्रमाती रहे, और वास्तव में देखा जाए इस देह का अगर गहराई से सोचो भी, जब ये आत्मा शरीर छोड़ देती है और दो दिन आप शरीर कहीं पड़ा रहे तो उसके बाद उसकी हालत कैसी होती है, कितनी बदबू आती है उससे। एक दिन स्नान नहीं करो आप तो क्या हालत होगी इसकी, लेकिन इससे अटैचमेंट कितनी होगी। फिर ये सबों को जानकारी भी है, उसके बावजूद इससे अटैचमेंट कितनी है, पता ही ये थोड़ी देर का ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस्म से हम इतने चिपक गए आत्मा कि छूटना मुश्किल हो गया है। जबकि बाबा हमको स्पष्ट बता रहे कि बच्चे तुम ये नहीं ये हो, लेकिन फिर भी चेतना बार बार बॉडी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अर्थात कोई भी शब्द आता है तो उसका गहराई से चिंतन करना। अगर नेगेटिव शब्द भी आ रहा ना, उसका भी चिंतन करो कि इससे हमको फायदा क्या हो रहा है, उससे भी हमको घबराने, उसका सामना करना, मुकाबला करना, उसका डट के फेस करना उसका। ऐसा नहीं हमको संकल्प क्यों आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, वो आ इसलिए रहा है क्योंकि हमारे पास दूसरे पॉजिटिव संकल्प कम है। वो अगर पॉजिटिव संकल्पों से हमने बुद्धि रूपी पात्र को भर दिया तो आने का मार्जिन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने संकल्पों, बुद्धि रूपी पात्र को संकल्पों से रिक्त रखा हुआ है। अब रिक्त रखा तो हवा तो जाएगी वहां वहां, ऊपर ऊपर से तो लग रहा है भरा हुआ है लेकिन हवा बहुत है। जैसे गिलास है, अब गिलास में पत्थर, छोटे छोटे पत्थर भर जाए ऊपर तक तो कहेंगे तो भरा हुआ है ना, लेकिन उसमें और भी बहुत कुछ आने का मार्जिन है। उसमें रेती डालेंगे वो भी आ जाएगी, पानी डालेंगे वो भी आ जाएगा, लेकिन हमने पहले कह दिया वो भरा हुआ है। उसी तरह हम कहते तो हैं ज्ञान तो शून्य बुद्धि भरी ज्ञान से, बहुत उसमें वैक्यूम है अभी भी, उसमें क्या क्या भरा हुआ है, नेगेटिव संकल्प भी घुसे हुए हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म विकार भी अंदर में बैठे हुए हैं जो चेतना को उड़ाने नहीं भरने देते हैं, भारी हो जाती है, बोझ है। भले ऊपर से बाबा कहते हैं बोझ मुझे दे दो, लेकिन स्थूल चीज तो है नहीं ये कि निकाला और दे दिया। भले चिटकी से हम प्रतिज्ञा भी कर देते हैं तो उसके बाद काम भी तो करना पड़ेगा ना। वो बोझ कौन कौन से, भले हम लिस्ट बना दिया 1, 2, 3, 4 करके और ये रहे बाबा के हवाले, तो उसके बाद काम भी तो करना पड़ेगा कि कौन कौन से बोझ अंदर हैं, और उनको निकालने का तरीका बाबा बताते हैं, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए कि उसको निकालना कैसे है, उसकी टचिंग के लिए फिर बुद्धि उतनी क्लीन जरूरी है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसलिए लंबे समय का अभ्यास अंतर्मुखी होकर हम गहराई से सूक्ष्म चिंतन की ओर अग्रसर हो तो धीरे धीरे हमें सूक्ष्म बुराइयां विकार हमको पकड़ में आएंगे। नहीं तो अपने संस्कार ऐसे होते हैं, अपने संस्कारों से दुखी होते रहते हैं, दूसरों के संस्कारों से हम इतना दुखी नहीं होते हैं जितना स्वयं के संस्कार कुंडली मारकर बैठे हुए हैं जो समय पर धोखा देते हैं। दूसरों का तो हमको पता है उसकी आदत ही ऐसे है, लेकिन जब स्वयं की आदत खराब हुई थी तो उसके सामना कौन करेगा। इसलिए नए संस्कार का निर्माण करना है, नए संकल्प बुद्धि में भरने हैं। तो पहली बात है अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर चिंतन करना है, मनन करना है। दूसरा है जब भी मौका मिले, बाबा तो कहते 8 घंटे तक याद करो, होता है 8 घंटे तक बैठ के याद, हम उसमें हाथ तोड़ा देंगे ठीक है बाबा कर लेंगे, लेकिन बैठने की बात नहीं है। 8 घंटे भी क्यों, हमारा जीवन ही योगी है, कहीं ना कहीं योग तो लगा ही रहता है, बाबा से नहीं लगा हुआ तो कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, तो हमारा 24 आवर हम योगी बने। ऐसा नहीं कि 8 घंटे किया तो 8 घंटे में अंदर अंदर ही कोई ऐसी घटना होगी उसमें हम शरीर छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं है। कभी भी जा सकते हैं, बुलावा कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा थोड़ा नहीं है, है ना। आज भी देखो कितनी बड़ी घटना होगी, पता चल गया होगा सबको ना। हाँ तो ये तो यहां हुई, दुनिया भर में कितनी घटनाएं होती हैं, कोई पता थोड़ा नहीं कब क्या हो जाए, कौन चला जाए। तो दूसरा है कि बॉडीलेस अशरीरी बनने का अभ्यास करना, जब भी मौका मिले 1 सेकंड का 2 सेकंड का बस बॉडी से डिटैच, इतना संकल्प ही करना है मैं अशरीरी आत्मा शांति धाम पहुंची, बाबा से कंबाइंड हुई, सारी शक्तियों से फुल चार्ज हुई, वापस अपनी देह में। वास्तव में आत्मा तो अपने आप में संपूर्ण संपन्न है ही है, अंत में ये संकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले से इसकी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि दूसरी संकल्पों का आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। कई ऐसे पर्दे हैं, कई ऐसी परतें हैं आत्मा के ऊपर जो हम ऊपर उड़ान ही नहीं भर पाते हैं। तो छोटे छोटे अभ्यास करने, जब भी मौका मिले मैं शरीर आत्मा हूं, बॉडी से बिल्कुल डिटैच, बॉडी यहां गिरी हुई है मैं सीधा ऊपर, 2-2 सेकंड का 5-5 सेकंड का अभ्यास करना। बाबा कहते हैं यह अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। तो अशरीरीपन का अभ्यास करना गहराई से, जब भी मौका मिले अशरीरीपन का अभ्यास। तीसरी बात है साइलेंस का अभ्यास। कहते हैं एक चुप तो, अब याद तो सबको ये 100 सुख हैं, लेकिन 100 सुख की लिस्ट निकाली किसी ने, तो कौन कौन से 100 सुख हैं लिखो। और साइलेंस अर्थात क्या, ज्ञान का मनन चिंतन करना, उससे आत्मा संसार की जो भी प्रदूषित बातें हैं उनसे आत्मा मुक्त हो जाएगी। जो भी शोर शराबा है हमारे आसपास में, जहां भी हम घरों में रहते हैं मेडिटेशन में बैठे हैं, अब आसपास में इतना शोर शराबा चल रहा है उसको हम चुप तो नहीं करा सकते, लेकिन जब हम मनन चिंतन में लग जाएंगे तो वो हमारा उसके ऊपर असर ही नहीं होगा कोई भी। आत्मा अपने मौन का स्वाद रस ले रही है, मौन की दुनिया की बातों का चिंतन करना, मौन की दुनिया का रस लेना, मौन की दुनिया में जाकर रेस्ट करना, वो जो मौन का सागर है उसके प्यार का अनुभव करना, जो मौन का सागर है उसकी गोद में अनुभव करना, उसके ज्ञान की बरसात का अनुभव करना। तो मन का मौन तो है ही है, लेकिन मुख का मौन भी साथ साथ, मुख का मौन अपने आप ही हो जाएगा जब मौन मन उस अवस्था में चला जाएगा, तो उस मौन की दुनिया में मन विचरण करने लगेगा तो मुख ऑटोमेटिकली अपने आप कम बोलेंगे। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं उसके बाद बोलने का मन होता है कभी, लेकिन बोलते तो हैं, कोई कोई तो बोलते हैं। तो उसका असर ये है कि मौन की दुनिया से जब उतरते हैं हम, तो अपने आप ही वो शक्ति हमको बोलने से कंट्रोल कर ले आती है, रोक देती है, क्योंकि मौन में बहुत सुख है। नींद के उठने के बाद कितनी शांति मिलती है। तो मौन क्या है, योग क्या है? योग भी एक नींद की अवस्था ही है। नींद में क्या हम भूल जाते सारी दुनिया को ना, ऐसे योग भी क्या हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं। तो तीसरी बात है मौन का स्वाद लेना है, मौन का सुख। तो फिर से ड्रिल हो जाए एक बार। दो नंबर क्या था? पांच नंबर, सात नंबर, नौ नंबर, ग्यारह नंबर, तेरह नंबर, एक नंबर। रंग बिरंगे सीन दिखाई दे रहे हैं अभी। किसी का हाथ किधर जा रहा है तो किसी का इधर जा रहा है। सारी गाड़ियां अलग अलग दिशा में जा रही हैं, रोड को छोड़ के गलियों में जा रही है। तो एक नंबर आत्मस्मृति का तिलक, दो नंबर पवित्रता का, पवित्रता के लाइट का ताज, तीन नंबर आत्मिक दृष्टि का काजल, चार नंबर मौन का सुख, पांच नंबर पवित्रता का गंगन, छह नंबर कंबाइंड रूप की अनुभूति, सात नंबर हाथ में हाथ, आठ नंबर अष्ट शक्तियों की छत्रछाया। ये अष्ट शक्तियां कौन कौन सी है? अच्छा, उसको छोड़ के और आठ शक्तियां बताओ। वैसे तो शक्तियां बहुत हैं, हम ना आठ शक्तियों तक ही फंसे हुए, बस जितनी बाबा ने बताया उस तरह तक ही। उसके आगे चिंतन नहीं करने का अपने को, क्यों टेंशन लेने का? हाँ जी, एकाग्रता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर, साइलेंस पावर, प्योरिटी की पावर, शांति और साइलेंस एक ही हो गया। हाँ जी, यूनिटी, संगठन की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मनन शक्ति, महसूसता की रियलाइजेशन पावर हो गया, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान, ज्ञान की शक्ति तो सबसे बड़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की शक्ति, और हम जितने लोग बैठे सबको एक एक शक्ति अलग अलग होनी चाहिए, है ग्रहण करने की शक्ति, छोड़ने की शक्ति, पकड़ने की शक्ति, बोलने की भी शक्ति, देखने की शक्ति, है कौन सी? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, हाँ, निर्णय करने की शक्ति, वह शक्तियों में आ गई। तो कितनी सारी शक्तियां हैं? निर्माण करने की शक्ति, विनाश करने की भी शक्ति, अपने संस्कारों का विनाश। तो कितनी सारी शक्तियां हैं? तो बाबा कहते ज्ञान रत्न से खेलते रहो। एक ज्ञान रत्न हमारी कर्मेंद्रियों में समा जाए, हमको फिर सोचना ना पड़े कि इसको आत्मा देखना है, इसको आत्मा देखना है, इतने लोगों को आत्मा देखना है। नहीं, सब आत्मा ही है। तो जब ज्ञान कर्मेंद्रियों में समा जाएगा तो कर्मेंद्रियां उसी अनुसार काम करने लेंगी, हमारे फिर वाइब्रेशन भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत अहमियत रखते हैं। जो भी हम चीज देख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ एक छोटा बच्चा बैठा है, छोटे बच्चे को देख के वाइब्रेशन कैसे होते हैं, हमारे मन की मेंटेलिटी कैसी हो जाती है? अच्छा, मंदिर में जाते तो मूर्ति को देख के वाइब्रेशन हमारे कैसे होते हैं, और क्रोध वाला व्यक्ति है तो उसको देख के वाइब्रेशन कैसे हो जाते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा करे हमें कैसे वाइब्रेशन होते हैं? कोई घटना सुनी वाइब्रेशन कैसे होते हैं? तो पल पल हमारे वाइब्रेशन चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे कर्मेंद्रिय में वो ज्ञान के वाइब्रेशन जब समा जाएंगे तो अपने आप ही काम करेंगे, वो सोचना नहीं पड़ेगा ये पुण्य आत्मा ये पाप आत्मा, नहीं, सब पुण्य आत्मा ही है। इसलिए बाबा जब भी आते हैं, अब तरह तरह के संस्कार वाली आत्माएं बैठी होती हैं, लेकिन बाबा तो शुरू में क्या कहते हैं, आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं, सिर के ताज बच्चों को देख रहे हैं। बोले वो तो सामने वाले को पता होता है कि मैं कौन सा ताज हूं, लेकिन बाबा की मेंटेलिटी कैसी, कितनी ऊंची सोच है, क्योंकि बाबा को सोचना नहीं पड़ता है, वो नेचुरल है, ज्ञान का सागर है वो। तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं ना, तुम्हारे भी तो स्वभाव संस्कार वैसे हो ना, जो उसके मुख से बाणी निकलते हमारे मुख से तो वैसे निकलनी चाहिए ना। अभी हाथी का बच्चा है तो तो उसके संस्कार कैसे? कुत्ते जैसे होंगे? शेर का बच्चा गधे जैसा होगा? अगर गधे जैसी हरकत करे शेर का बच्चा, तो शेर क्या करेगा? मारेगा उसको। तो हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। तो भक्ति में भी तो जानते इस बात को, तो संस्कार कैसे होने जाएगी? सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति नियम करते हैं। जैसे बाबा ने हमको स्वीकार कर लिया कि बच्चे संसार को परिवर्तन करने की हिमाकत रखते हैं, ताकत रखते हैं, इनमें सामर्थ्य है, हमें ऊपर ऊपर भरोसा कम होता है। कल की मुरली में प्रश्नोत्तर था ना, विश्व को बदलने की, विश्व पर राज करने की ताकत आज की मुरली में। हाँ, तो बाबा को भरोसा पूरा, हमें भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को बदलने की ताकत में कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। तो उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, लेकिन अंतिम सत्य तो विजय तो होगी होगी है। तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना, जो बाबा कह रहे हैं उसको, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसको पूरा स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि उसने कहा तुम फरिश्ता, तो फरिश्ता हूं मैं, फिर उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उसमें फिर 1% भी अंश मात्र संशय नहीं है। हूं तो हूं ही, बाकी सामने वाला देखे ना देखे मुझे उससे कोई लेना नहीं है, लेकिन मैं तो फरिश्ता हूं और ये सब फरिश्ते ही हैं। जिस सोमान में हम ठहरे होते हैं उसी सोमान से दूसरों को देखने की मेंटेलिटी अपने आप तैयार होती है, वो सोचना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे संकल्प हैं वैसे हमारी दृष्टि है, वो उन संकल्पों के अनुसार ही दूसरों को ऊर्जा भी वैसे मिल रही है। अगर हम लंबे समय तक फरिश्तेपन के अभ्यास में रहते हैं तो दूसरों को भी फरिश्तेपन की ऊर्जा जा ही रही है, और वो भी हमको फिर उसी दृष्टि से धीरे धीरे देखना आरंभ करेंगे। अपने आप सामने वाले बोलेंगे ऐसे हैं, क्योंकि बाबा की सोच ऊंची है, तुम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, तो विश्व कल्याणकारी बाप है इसलिए बच्चे भी वैसे दिखाई देते हैं उसको, और है भी वे तो वैसे ही है ना। तो एक्सेप्टेंस करना है, इस चीज को एक्सेप्ट करना। तो तीन बातें बताई थी, सबसे पहली बात अंतर्मुक्ता की गुफा, दूसरी बात अशरीरीपन का अभ्यास, तीसरी बात मौन का सुख अभ्यास, और चौथी बात साक्षी दृष्टा। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, हमारे ही कर्मों का परिणाम, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तरह तरह के स्वभाव संस्कार वाले हैं, तो साक्षी अवस्था देख, अगर वो अभ्यास है हमारा साक्षीपन का अभ्यास, तो हम विचलित नहीं होंगे, स्थित प्रज्ञ रहेंगे, निंदा स्तुति ये सब चीजें आएंगी जीवन में। ऐसा नहीं, हम यज्ञ में देखते हैं दादियों तक, ब्रह्मा बाबा को देख लो, कितनी सारी उनको सुनना पड़ा, कितना विरोध हुआ, लेकिन बाबा चल अडोल रहे, अभ्यास था उनको साक्षी दृष्टा का, दादियों को प्रैक्टिकल में देखा। तो हम भी तो उसी खानदान के ना, उसी फैमिली के तो हैं, तो हमारे भी तो स्वभाव संस्कार वही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो साक्षी दृष्टा का अभ्यास है, और साक्षी दृष्टा का अभ्यास करने से लंबे समय तक वो अवस्था एक रस होगी, तो ही हम फिर निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी का अनुभव कर सकते हैं। जो सच्चे योगी, जो 8 घंटे 4 घंटे, ये तो बाबा ने कहा चार्ट भरना ही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चार्ट भरेंगे तभी हम उस अवस्था की ओर अग्रसर होंगे। अटेंशन तो रखना ही है, लेकिन अल्टीमेट अंतिम तो हमको क्या बनना है? निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी। तो चौथी बात साक्षी दृष्टा, जितना साक्षी दृष्टा होंगे उतना साकाश भी अपने आप जाएगा, ऊंची अवस्था में रहेंगे, किसी का भी स्वास्थ्य संस्कार हमको प्रभावित नहीं करेगा, किसी का संस्कार आकर्षित नहीं करेगा, गुण आकर्षित नहीं करेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं सबके गुण और विशेषताएं देखो, लेकिन उन पर प्रभावित ना हो जाओ, क्योंकि वो देन किसकी है? प्रभु प्रसाद है वो, और हमारी अपनी थोड़ी नहीं है। हम सभी अपने जीवन का विश्लेषण करें, जांच करें, तो जब से ब्राह्मण जीवन हम सबको मिला है तब से लेकर अभी तक की सफर में हमारे जीवन में कितने बदलाव आए, ये बदलाव कहां से आए, कहां से ताकत आई है? कभी हमने ऐसे सोचा था कि हम इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे, भगवान की गोद में जाके बैठेंगे, इतने ऊंचे सत्संग में बैठेंगे? तो बदलाव की ताकत कहां से आई, परिवर्तन कहां से आए? वो सबके ऊपर वाले की देन है, हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी तो नहीं है, तो सब उसकी देन है। ये सारा सामर्थ्य, सारा बल, सारी पावर, सारी शक्ति उसने भरी है, और वो निरंतर दे रहा है। बाप की प्रॉपर्टी बच्चों के लिए तो होती है ना, किसके लिए होती है? और वो तो अनवर्त रूप से, अविरल रूप से दे रहा है, लेकिन ग्रहण कितना कर पा रहे हैं उसको, उसका सुख कितना ले पा रहे हैं? ब्राह्मण जीवन का जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, वो कहां तक ले पा रहे हैं? अगर हम इसका नहीं ले पा रहे हैं तो फिर भौतिकता की ओर जा रहे हैं। जैसे आज का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था आज का? साधन और साधना। तो उसका एक टॉपिक होना चाहिए साधकों की साधना के साधन। इस पर एक बहुत अच्छा क्लास हो सकता है, सबको अपना अपना तैयार करना, साधकों की साधना के साधन, ऐसे उसको टॉपिक में चेंज कर देने का। एज इट इज नहीं रखना है, वो तो हमारे सामने एक एग्जांपल रखा हुआ है, लेकिन उसको नए तरीके से निर्माण करना। अब इतना छोटा सा है, भूलेगा नहीं कभी भी, उसमें सारा स्लोगन आ गया साधकों की साधना के साधन। और कौन कौन से साधन है सारे लिखो। तो साक्षी दृष्टा, अगली बात है, कितनी बातें हुई? चार। नेक्स्ट है पढ़ाई। पढ़ाई बाबा कहते मिस नहीं करनी कभी भी। ठीक है, इत्तेफाक कभी ऐसी वैसी बात होती है, सेंटर में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन घर में भी मुरली कभी मिस नहीं करने की, क्योंकि तो मुरली एक हमारा श्वास है, वो हमारा भोजन है, वो शक्ति है, प्राण है वो। लेकिन रोज रोज अगर एक ही सब्जी बना के खाते रहेंगे तो बोर हो जाते हैं, इसलिए बताया मुरली को नए नए तरीके से सुन। कभी पीछे स्लोगन से पढ़ना आरंभ कर दो, मीठे बच्चे के बजाय स्लोगन से पढ़ना चालू करो। कभी उल्टा पकड़ के पढ़ना चालू करो, उल्टे हाथ से लिखना चालू करो। तो नवीनता करनी है उसमें, और कुछ भी नवीनता करनी है वो सारी एक्यूरेट ही है। ऐसा नहीं हम सोचने कि बाबा ने श्रीमत तो बताई नहीं है। बाबा केवल हमारे सामने एग्जाम्पल रखते हैं, अपनी बुद्धि चलाने के लिए बाबा ने शक्ति दी हुई है, दिव्य बुद्धि दी है, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए हमको थोड़ा सा रचनात्मक के प्रति उस तरफ अपनी बुद्धि को अग्रसर करना पड़ेगा। तो पढ़ाई के प्रति शौक, कापी पेंसिल लो, 8-10 पेन रखो, रंगीन रंगीन, मीठे बच्चे, लाल रंग से लिखो, हरे रंग से ये लिखो, नीले रंग से ये लिखो, दो दो लाइनें लिखो बोले, फिर दो दो लाइनें पूरा दिन याद होनी चाहिए, फिर उसको बार बार रिवाइज करना, रिकॉल करना। नहीं तो पढ़ाई ऐसा है कि हाथ से खिसक जाती है, हाथ में कुछ आता नहीं है। फिर शाम को पूछे मुरली में क्या था, बहुत अच्छी थी मुरली तो आज थी, बात मत पूछो क्या थी, बात ही मत पूछो, बहुत अच्छी थी, पूछो मत आप दो। आपने पूछने की हिम्मत कैसे की इतनी अच्छी मुरली के लिए। तो पढ़ाई के प्रति शौक है। हम जब स्कूल में थे 10th क्लास में, हमको पढ़ने का बहुत शौक था, तो 10th के बाद हमको ना सर्विस के लिए भेज दिया, तो हमको मन में बहुत बड़ी टीस रहेगी पढ़ने की, और हम सोचते थे टीचर बनेंगे हम। तो पढ़ाई के बाद फिर हम सर्विस में लग गए, फिर खैर सर्विस में भी अच्छे सेट हो गए, पढ़ने की बड़ी टीस रहेगी। 85 में हमने मैट्रिक की, फिर 91 में हमने प्राइवेट एग्जाम भर दिए सर्विस करते करते, फिर हायर सेकेंडरी भी कर लिए। लेकिन फिर चस्का पड़ गया उसका कमाने का, फिर पढ़ाई छोड़ दी उसमें। फिर 95 में हमको ज्ञान मिला, और जब पता चला कि तुमको रोज ही पढ़ना है, इतनी खुशी की बात मत पूछो कि जिंदगी भर हमको पढ़ना है, जब तक जीना तब तक पढ़ना, जैसे सेंटेंस है ना, हमने कहा अब तो जीवन की सारी आशाएं पूरी होगी, बाकी भगवान मिला नहीं लो तो बाल की बात है अनुभव, लेकिन पढ़ाई जीवन पर पढ़नी है तुमको। तो पढ़ाई का भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस पढ़ाई में हर समस्या का समाधान है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज तक हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा ही नहीं, समस्याएं बहुत आती रही, लेकिन हर समस्या का समाधान भगवान के महावाक्य में है। उसी अनुसार मुरली का उसमें महावाक्य दिखाई देते हैं, और जिसको जो समस्या होती है ना, उसी समस्या के अनुसार उसका दृष्टिकोण होता है, हर बात को उसी अनुसार सुनता हूं कि मेरी समस्या का समाधान कहां मिल रहा है। तो हर समस्या का समाधान मुरली में है। तो एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूं। तो अब कुमार थे, अभी भी कुमार ही हैं, जब ज्ञान में चले तो अब पता होता है घर वाले तो कितने रोकते हैं। तो घर वालों ने तो बहुत प्रेशर डाला, बहुत लंबी चौड़ी व्यथा कथा वो, लेकिन थोड़ा एक शॉर्ट सुना देते हैं। तो हर बात का बाबा कैसे तोड़ निकाल के अनुभव कराता है। तो पिताजी ने कहा तुमको शादी करनी है। तुम्हारे जो बड़े भाई थे ना, वो 19-20 साल की उम्र में शादी कर दी उनकी, पुराने जमाने में तो कर देते थे। तो हमने तो बोला था हम तो इतना जल्दी नहीं करेंगे, तो हमारे से पहले छोटी बहन की शादी कर दी, फिर हम 21-22 साल के हो गए, फिर पिताजी तो पीछे पढ़ना चालू कर दिया, फिर हमको 22 साल की उम्र तक ज्ञान मिल गया ये। अब ज्ञान मिल गया तो फिर तो पता चल गया मैंने शादी तो गई गांव छोड़ो उसको, लेकिन पहले हमको ज्ञान को अच्छी तरह से भगवान हमारे हाथ में आ गया, अगर भगवान हाथ से छूट गया तो जिंदगी गई, पहले तो इसको समझना अच्छी तरह से। तो पिताजी तो पीछे पड़ गए अच्छी तरह से, बहुत रिश्ते हुए, कितने रिश्ते हुए पता है, जितने बाबा के गुरु थे उतने हमारे रिश्ते हुए 12 रिश्ते। तो और ऐसा नहीं पहले तो शादी करने चाहते थे, लेकिन जब ज्ञान मिला तो फिर तो सब आउट हो गया। तो एक बार पिताजी हमको बुलाने आए, कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हम बैठे हुए थे ऐसे ही, तो ध्यान में मना असली पन्ने का अनुभव करा था, तो मैं जैसे जस्ट बैठा हूं और क्या दिखाई दे रहा है, जैसे संदेशियां संदेश सुनाती है ना कि ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मैं जैसे बैठा तो ऐसे लग रहा है जैसे बाबा कह रहे बच्चे तेरे पिताजी आएंगे, उनके हाथ में काले रंग की थैली होगी, सॉरी उनके हाथ में काले रंग का बैग होगा, उसके अंदर एक कागज की पुड़िया होगी और पुड़िया के अंदर लाल रंग की मिट्टी होगी, केवल इतना ही दृश्य दिखाई दे रहा है। तो हमने बोला ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, हमारे पिताजी तांत्रिक भी थे लेकिन हमने कभी माना नहीं उनको तांत्रिक मांत्रिक, क्योंकि हमने कभी विश्वास किया नहीं उस चीज पर। तो जैसे पिताजी पहुंचे वहां तो सचमुच हाथ में बैग था उनको काले रंग का, तो पिताजी कहते थोड़ा रख लो, और पिताजी पुराने जमाने के तो कैसे पिताजी होते पता ही है आपको, तो बैग रख लिया उधर। तो जैसे वो पिताजी वहां से गए थोड़ा दुकान से बाहर, तो मैंने देखा तो सचमुच उसके अंदर कागज की पुड़िया पड़ी है और बीच में लाल रंग की मिट्टी पड़ी है, और वो मंत्र अभिशप्त की होगी तो उन्होंने वो मिट्टी निकाल के फिर वहां एक बगीचा था वहां मिट्टी फेंक दी और कागज को उल्टा करके लगभग वही रंग की मिट्टी वहां उस बगीचे मिल गई संयोगवश, कागज को उल्टा करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके पुड़िया बंद करके उनके बैग में रख दी। तो बाबा के प्रति इतना विश्वास बढ़ गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो खैर पिताजी वापस आए तो घर में गए, अकेले रहते थे उस समय, तो हमने भोजन बनाया खिलाया उनको, बोले क्या करना है शादी का, मैंने शादी तो करनी, मैं ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में जाने वाला नहीं, मेरे विचार बदल रहे। तो पिता ने सोचा मिट्टी काम कर रही है। तो बाबा की सारी युक्तियां इतनी ऐसी आती थी ना बाबा के ऊपर, बात बस पूछो। तो उनकी मिट्टी पर उनको 6 महीने चलाता रहा और उनको खतरा फिर भी था, अगर हां कर देगा फिर मना कर देगा, हां तो मैं करता था फिर मना कर देगा, क्योंकि पहले बहुत रिश्ते मना कर देगा। बड़े दुखी हो गए थे हमारे पिताजी, दुखी माना रोते थे कि शादी के लिए मना क्यों कर रहा है। लेकिन जब उनको समझ में आया ना 2006 में पिताजी आए, तो यहां कर भी रोए कि सचमुच इतना बड़ा कार्य चल रहा है। तो यहां से जाने के बाद प्रदर्शनी खुद गांव में की, गांव वालों को इकट्ठा करके, तो ज्ञान में सहयोगी तो बन गए अच्छी तरह से, पर योग्य तो फिर लंबा समय का सफर चाहता, फिर तो उसके पहले पहले शरीर छोड़ के चले गए। हाँ वो ज्ञान में नहीं चले गए लेकिन दूसरे लोगों को चला के चले गए, दूसरे लोगों को कहते थे एक बार तो आप माउंट आबू होके देख के आओ, और जो यहां आए ना वो आर्मी जीता बढ़ चल होगी उनके सारे, तो देखो उनका भी हो गया। तो ऐसे था, फिर एक बार ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो चौथी बात कौन सी थी, साक्षी साक्षी दृष्टा, पांचवी बात पढ़ाई, और छठी बात ज्ञान की दृष्टि जो आज बाबा ने कहा, हर एक चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखना है। लौकिक में भी रह रहे हैं तो भी हमको ये देखना कि सेवा के लिए हमको ये आत्माएं मिली हुई हैं, ये नहीं सोचना हमारा लौकिक है पिताजी माताजी हैं, वो तो हैं ही हैं, लेकिन एक घर के इष्ट देव इष्ट देवी हैं वो, उनको एक फरिश्ता रूप में देखना, हर चीज से ज्ञान को जोड़ना है। सेंटर से घर तक जा रहे हैं तो जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं ज्ञान की दृष्टि से देखना उस चीज को। तुम्हारी ये आदत लंबे समय के ज्ञान की दृष्टि वाली आदत हमको ही फिर हमारी अनेक प्रकार की परिस्थिति से मुक्त कर देगी अपने आप को, जो मन बुद्धि भटकता है इधर उधर अपने आप को मुक्त कर देगी वो। नेक्स्ट है होली वाइब्रेशन, पवित्रता की वाइब्रेशन, सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा कहते हैं अपने आप को प्यार से परमात्म प्यार से इतना भरपूर कर लो कि सारा दिन कोई भी प्यार आपको आकर्षित ना करे। तो सवेरे सवेरे परमात्म प्यार के पवित्र वाइब्रेशन से अपने आपको इतना भर लेना है, इतना भर लेना है, ऐसे सोचना है कि सारे परमात्म पवित्रता के सागर वो परमात्मा के सारे वाइब्रेशन मुझ में समा गए, एक एक बाल में समा गए, भले बाल उड़ रहे हैं बालों में समा गए, आंखों में समा गए, रग रग में मेरे खून में समा गए, वो जैसे शरीर में खून दौड़ रहा है ऐसे शरीर में पवित्रता के वाइब्रेशन दौड़ रहे हैं, इन आंखों में पवित्रता की रोशनी समाई हुई है और सबकी आंखों में है सचमुच। भगवान ने इन आंखों को दृष्टि दी तो आंखें कैसी होंगी, परिवर्तन हो गई है, ये सामान्य आंखें नहीं है। जो बाबा कहते तुम्हारा दृष्टि से तुम्हारी निहाल हो, नजरों से निहाल हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा बोल दिया बाबा ने। तो सचमुच बाबा ने जो हमको दिया है उसकी अहमियत का हमको पता होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते प्राप्तियों का हमेशा सिमरन करते रहो, प्राप्तियों की माला सदा गले में पड़ी हुई हो। तो कितना ऊंचा उसने हम सबको दे दिया है, क्या क्या नहीं दिया ये बताओ, सब कुछ दे दिया उसने। अब सब कुछ क्या दिया उसकी लिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो खाली सब कुछ दे दिया पता तो होना चाहिए। कहते हैं परमात्मा का दिया हुआ तो सब कुछ है, लेकिन रखा कहां ये पता नहीं है, तो वो पता होना चाहिए ना। अब दुश्मन आ रहा सामने से और मेरे पास है ही नहीं हथियार, तो उसका सामना कैसे करेंगे। तो सूक्ष्म संकल्पों का भी तूफान आ रहा है, आज की मुरली में था, संकल्पों विकल्पों का तूफान आएगा, माया तूफान लाएगी, लेकिन तुमको घबराना नहीं है, माने चीजें आएंगी, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ही कर्मों के बीज रोपे हुए हैं, वो हमेशा उस समय अनुसार बारिश होगी, एटमोस्फेयर तैयार होगा तो सब बाहर आएंगे वो। लेकिन उन संकल्पों से घबराना नहीं है, उन संकल्पों का सामना करने के लिए नए संकल्पों की फौज तैयार करनी है, लंबी चौड़ी नए संकल्पों की फौज हमारे पास होनी चाहिए, और उसके लिए चिंतन मनन करना आवश्यक है। तो फिर से ड्रिल, दो नंबर क्या था, तीन नंबर, तीन नंबर ऐसे भैंस की सिंह की तरह लगा रही, तो अच्छा एक नंबर तिलक, दो नंबर ताज, तीन नंबर काजल, चार नंबर मौन, पांच नंबर कंगन, ग्यारह नंबर ये मूल बतन, बारह नंबर फरिश्ता, तेरह नंबर नौ नंबर, दस नंबर, आठ नंबर, सात हाथ, छह कंबाइंड तीन, तेरह नौ नौ छह पंद्रह नहीं है, ओम शांति, टाइम हो गया अभी।